स्वमानधारी होकर रहना। बाबा ने एक बार कहा था, स्वमान एक शब्द को जीवन में धारण करने से बाप समान बन जाएंगे। स्वमान को जीवन में धारण करने से बाप समान बन जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं ब्राह्मण जीवन में हमारा जो स्थिति का स्तर है कभी बहुत अच्छा रहता है, फिर कभी नीचे आता है, फिर मेहनत करके ऊपर आती है स्थिति, फिर नीचे आती है। ये अप डाउन क्यों होता है? उसका आधार है स्वमान के अभ्यास की कमी। जब हम स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहते हैं तो उमंग और उत्साह हमारा बहुत अच्छी तरह से अनुभव होता है, और उमंग उत्साह के आधार से हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है। जब स्वमान के सिंहासन को हम छोड़ देते हैं, उमंग उत्साह हमारा कम हो जाता है, तो स्थिति हमारी नीचे आ जाती है। इसलिए बाबा ने पिछले सीजन में कहा था, एकाग्रता के साथ स्वमान धारी होकर रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। स्वमान अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना। और वास्तविकता की स्थिति में स्थित हो जाना। मैं शुरू शुरू में नागपुर में ज्ञान में आया था,
रोशनी जला दी, दीपक जला दिया।
तीन साल तक मेरी स्थिति नहीं बनी।
दुश्मन को कैसे परास्त करना है,
बहुत मेहनत करता रहा लेकिन स्थिति मुझे नहीं बनी।
तो बहुत अच्छी,
यहां तक कि ज्ञान छोड़ने का भी विचार मेरे मन में आया था। कहा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे प्रति? बहुत एकांत में बैठकर मैं खोजने लगा उस कारण को। कारण निकला इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। जब हम अपनी कमी को देखते हैं, खामी को देखते हैं, त्रुटि को देखते हैं, हमारे मन में अशुद्ध संकल्प चलते हैं, हमें अपने प्रति घृणा आती है, अपने प्रति हीन भावना आती है। वो हीन भावना हमें आगे बढ़ने नहीं देती। मेरा चेहरा हीन भावना के तरफ था जिसके कारण मेरी उन्नति नहीं हो रही थी। मैंने केवल अपने चेहरे को टर्न किया स्वमान की ओर। कौन कहता है मैं कुछ नहीं हूं? भगवान ने मुझे चुना है, जरूर मेरे में विशेषताएं हैं, तब मुझे उसने चुना है। तो जैसे ही स्वमान में स्थित होने लगा, धीरे धीरे स्थिति ऊंची बनती गई, और अभी बहुत अच्छी स्थिति मेरी बन चुकी है। बाबा हर रोज हमें पालना दे रहे हैं, मुरली से देते पालना, योगाभ्यास से देते हैं, इतने यज्ञ की दादियों की पालना लेते हैं, फिर भी हमें नशा नहीं चढ़ता है, फिर भी हम सोमान के सिंहासन पर नहीं बैठ पाते हैं। इतनी मेहनत बाबा हमारे पीछे कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? मुरली सुन रहे हैं, सेंटर पर जाके चार दीवारों के बीच में मुरली सुनते हैं, आप झूमने लगते हैं, और जैसे ही सेंटर से बाहर जाते हैं आपका ईश्वरीय नशा धीरे धीरे डाउन होता है। ऑर्डिनरी समझते हैं खुद को, क्यों भाई, क्यों ऐसा नशा मुझे नहीं रहता है सारे दिन भर में, कारण क्या है उसका? उसका कारण है 63 जन्म हम माया के जेल में माया के गुलाम बनकर रहे हैं। कोई बड़ा व्यक्ति एक दिन भी जेल में जाता है, जैसे जेल से बाहर आता है चेहरा अपना छिपाता है मीडिया से, इधर से लोगों से भी, कि लोग मुझे किस नजर से देखेंगे। हम सतयुग त्रेता युग में राजे महाराजे के रूप में पाठ बजाया, और जैसे ही द्वापर में हमने प्रवेश किया माया ने हमें किडनैप किया और जेल में फोंक दिया। अंग्रेजी की गुलामी केवल 150 साल की थी, माया की गुलामी कितने साल की रही? 2500 साल तक। उस गुलामी के कारण आत्मा में दीन भावना, हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी हैं, वो हमें पुनः सोमान के सिंहासन पर बैठने नहीं देती हैं। तो हमें ये द्वापर कलयुग को नहीं देखना है, सतयुग त्रेता युग में जो हमारा हीरो का पार्ट था उसको हमें याद करना है, और पुनः खोया हुआ जो सोमान है उसको पुनः अनुभव करना है। स्वयं ही स्वयं को मान देते रहो, दूसरा मुझे मान दे न दे मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे स्वयं को देना सीखना है। तो सोमान में रहने से 10 प्रकार के लाभ हमें होते हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहुत जादू का काम करता है ये सोमान। पहला लाभ है स्वमान में स्थित होने से स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है। बाबा कहते हैं मेरी एक चाहना है। कौन सी चाहना है? मैं हर एक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। हर एक मेरा आत्मा रूपी बच्चा है राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है, मेरी चाहना है। राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा अपनी प्रजा पर राज करता है, तो मैं आत्मा सोमान के सिंहासन पर बैठकर अपनी जो सूक्ष्म और स्थूल प्रजा है कर्मेंद्रिय रूपी, उस पर मुझे शासन करना है। तो जो भगवान से मुझे सिंहासन मिला है मुझे किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं है। चाहे मेरा कोई कितना भी अपमान करे लेकिन मुझे सोमान को नहीं छोड़ना है। ब्रह्मा बाबा ने नंबर वन लिया उसका सीक्रेट यही था। शुरू दिन से बाबा को नारायणी नशा रहता था, सोमान में बाबा सदा स्थित रहते थे। मैं नारायण बनने जा रहा हूं, मैं कल मैं मिचनो कृष्ण बनने वाला हूं। उस नारायणी नशे ने बाबा को अपने संपूर्णता के निशाने तक पहुंचा दिया जल्दी से जल्दी। तो स्वमान हमें स्वराज अधिकारी स्थिति में स्थित करता है। जब आत्मा ऊंची शान में रहती है तो मन बुद्धि कर्मचारी हमारी ऑर्डर को मानते हैं। जब ऊंची शान में रहित नहीं रहते हैं मन बुद्धि हमारी ऑर्डर को नहीं मानते। तो हमें उस सिंहासन पर बैठना है और मन बुद्धि पर राज करना है। जो स्वयं का राजा बनता है संगम युग में सतयुग में वो औरों का राजा स्वतः ही बनता है, क्योंकि उस पर शासन करने के संस्कार उस आत्मा में भर जाते हैं। राजा महाराजा बनने का आधार है नियंत्रण शक्ति और शासन करने की शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर पास होना अपने पास। जितनी जिसकी जिसके पास कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर होती है उतना वो बड़ा राजा महाराजा बनता है, और जिसके पास रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर नहीं रहती है वो साधारण प्रजा बनता है। दूसरा लाभ, स्वमान में स्थित रहने से हम सदा स्वचिंतन में मगन रहते हैं। पर चिंतन से, पर दोष दर्शन से सदा सेफ रहते हैं। जब स्वमान में स्थित रहते हैं ऊंचे नशे में स्थित हो जाते हैं तो हमारे मन में शुद्ध संकल्पों का प्रवाह चलता है, स्वचिंतन में हम मगन हो जाते हैं। ऊंची स्थिति होने के कारण मन में संकल्प भी इस प्रकार के उत्पन्न होते हैं। मां बाप क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे कैसे हो, कैसे हो, हेल्दी हो, हष्ट पुष्ट मेरे बच्चे हो। तो आत्मा रूपी मां भी चाहते हैं मेरे जो संकल्प रूपी बच्चे हैं वो भी शक्तिशाली हो, साधारण न हो, कमजोर न हो। तो जितना ऊंचा नशा रहता है, ऊंचा सोमान रहता है उतने शक्तिशाली संकल्प हमारे मन में स्वतः ही चलते हैं। स्वचिंतन में हम मगन रहते हैं, पर चिंतन करना, पर दर्शन करना उसमें हमारी रुचि बिल्कुल नहीं रहती है। हीरो एक्टर किसी को नहीं देखता है, सब उसको देखते हैं, इसलिए वो हीरो एक्टर कहलाता है। हर एक एक्ट जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने पर रहता है, दूसरों को नहीं देखता है वो, ये उसकी निशानी है। तीसरा लाभ है स्वमानधारी होकर रहना अर्थात खजाने सफल करना। जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको अपने धन का सारा नॉलेज रहता है, मेरे पास इतना धन है, इतने खजाने हैं। तो जब हम स्वमान में रहते हैं तो जो बाबा ने हमें संगम युग में खजाने दिए हैं वो खजानों का ज्ञान हमारे पास रहता है, उनकी स्मृति रहती है, और स्मृति रहने से उन खजानों को हम सेवा में लगाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, स्वयं के लिए, औरों के लिए, और वो खजानों की वृद्धि होती रहती है। वो बढ़ते जाते हैं। 1 लाख रुपया घर में ही अलमारी में रख दिया, 1 साल के बाद में तो वो 1 लाख ही रहेगा, लेकिन उस 1 लाख को आपने बिजनेस में लगाया, सेवा में लगाया, तो वो 1 का 1.25 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख होगा। तो ऐसे जो खजाने हम बाबा की सेवा में लगाते हैं, खुद की सेवा में लगाते हैं, सफल करते हैं, तो वो और वृद्धि को पाते हैं। इसलिए स्वमान में रहने से ऑटोमेटिक खजाने हम सफल करते जाते हैं, प्रयोग में लाते रहते हैं, वरना उसकी विस्मृति भी हो सकती है। चौथा लाभ है स्वमान में रहना अर्थात आत्म अन्वेषण करना। आत्मा में जो सुप्त शक्तियां हैं उन शक्तियों को जागृत करना, जगाना। हर एक आत्मा में असीम शक्तियां हैं, हर एक में है, और उस सुसुप्त शक्तियों को जगाने का काम केवल स्वमान करता है, उसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। भगवान ने जब ये संस्था की नींव रखी तो उन्होंने एक पॉलिसी को अपनाया था। छोटी छोटी कुमारियां, बूढ़ी बाढ़ी माताएं आई 300 साढ़े 300, और भगवान जी चले नई दुनिया बनाने के लिए। 300 साढ़े 300 छोटी छोटी कुमारियां और बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कोई भाई लेके सिंध में, नई दुनिया बनानी है मुझे। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी को अपनाया। कौन सी पॉलिसी को अपनाया? जो माताओं बहनों का अनेक जन्मों का गिरा हुआ स्वमान था, उस गिरे हुए स्वमान को ऊंचा उठाया, और जैसे उन्होंने उनके स्वमान को ऊंचा उठाया, उन्होंने जो प्रतिभा थी, जो क्षमता थी, जो शक्तियां थी, जो पोटेंशियल था, वो सारा बाहर आ गया, और उन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखार दिया, और आज जो छोटी छोटी कुमारियां दादियां बनकर सारे विश्व पर छाई हुई है, ललकार रही हैं, बड़े बड़े धर्म गुरुओं को चैलेंज दे रही हैं। यह है चमत्कार केवल स्वमान का। पता है तुम कौन हो? तुम दुर्गा हो, अनेक आत्माओं की दुर्गंध को मिटाने वाली दुर्गा हो, अनेक आत्माओं की काली मां को मिटाने वाली काली मां हो, महाकाली हो। मैं दुर्गा हूं? कैसी दुर्गा हूं? बिल्ली घर में आती है, छिपकली बाथरूम में आती है, अरे अरे इसको हटाओ। छिपकली को डरते, बिल्ली को डरते, चूहे को डरते, कहां से दुर्गा हूं? दूसरे दिन और बाबा आते हैं, फिर उसी नगर से दोहराते हैं, तुम दुर्गा हो, तुम शेरनी हो, तुम शिव शक्ति हो। दुनिया में मैं अकेला ही हूं जो सत्य सदा सत्य बोलता हूं। मानो, विचार करो, स्वीकार करो, तुम शेरनी हो। जब वो स्वीकार करते हैं और स्वयं को वो समान में स्थित होते हैं तो ऑटोमेटिक उनकी शक्तियां जागृत होती हैं और वो शेरनी आज बन गई है। यह है इसका चमत्कार। तो भगवान ने जो हमें सम्मान दिए हैं उसको हमें स्वीकार करना है। झूठी महिमा नहीं है, वास्तविकता है। जो भी टाइटल हमें बाबा मुरली में देते हैं वो वास्तविकता है। जितना स्वीकार करते हैं दिल से वो हमारा टाइटल बन जाता है। कोई नेता बनता है, वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, उसका चेहरा बोलता है मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं नेता हूं, इन लोगों के बीच में मैं बैठा हूं, नेता हूं। फिर जन्म से तो वो नेता नहीं था, जन्म से तो वो डॉक्टर नहीं था, जन्म से तो वो इंजीनियर नहीं था, साधारण व्यक्ति था वो। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई किया, डॉक्टर के अभ्यास किया, उसके प्रैक्टिस किया, अभी उसके दिमाग में प्रिंट हो गया 24 घंटे नींद से उठेगा तो भी मैं डॉक्टर हूं। वो लौकिक समान है। तो अलौकिक समान का जो पावर टाइटल हमें देते हैं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विजयी रतन हो, राज ऋषि आत्मा हो, तपस्विनी हो, योगिनी हो, जो आपको अच्छा लगता है वो टाइटल एक दो तीन स्वीकार करो और उसमें स्थित हो जाओ तो ऑटोमेटिक आप ऐसा अनुभव करेंगे कि मेरे में बहुत उन्नति हो रही है। जो आपके दिल को लगता है, दिल को टच होता है, ऐसे दो चार सम्मान के पॉइंट्स ले लो, उस पर मनन चिंतन करो और उसको जीवन का टाइटल अनुभव करो तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है।
आपको
आगे
पता चलेगा कि कहां मैं आत्मा हूं, ये स्थिति में स्थित हूं।
19 मार्च को 88 में बाबा ने मुझे पर्सनल मुलाकात में विश्व परिवर्तक आत्मा का वरदान दिया था। विश्व परिवर्तक आत्मा का जो टाइटल मुझे दिया था, जब मुझे विश्व परिवर्तक आत्मा हूं ये मन में आ जाता है पॉइंट, तो सीधी मुझे परम धाम की फ्लाइट मिलती एक सेकंड में, बाबा के पास में पहुंच जाता हूं एक सेकंड में।
रनवे पर फास्ट रूपी कार में।
तो ऐसा सम्मान हमें एकदम ऊंची स्थिति पर बिठा देता है।
चांस तो हमें नहीं मिला।
जैसे बर्फ के टुकड़े को पानी में रखते हैं तो केवल आठवां हिस्सा दिखाई देता है, सात हिस्से पानी में डूबे रहते हैं, वो जो दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे जब हम बाबा के पास आए हैं, जितनी भी हमारे पास शक्तियां थी केवल वो मन का आठवां हिस्सा था, सात हिस्से आपके सुषुप्त हैं जिन्हों को आपको जगाना है, जागृत करना है, और वो काम सम्मान करता है। समझा? प्रैक्टिकल उदाहरण, जब बाबा शिव बाबा गुलजार दादी जी के तन में आते हैं डायमंड हॉल के स्टेज पर, चेहरा बाबा का देखो, हर कोई समझ सकता है ये दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमारे सामने बैठी है। चेहरा बोलता है, चेहरे में वो समान ऑटोमेटिक है, नेचुरल है कि मैं दुनिया की सर्वोच्च सत्ता हूं, सुप्रीम सोल हूं। जब मुरली चलाते हैं वो अथॉरिटी बाबा की मुरली में हर कोई अनुभव करता है।
जो विमान है वो,
तो प्रैक्टिकल हमें बाबा से सीखना है वो, कि जैसे बाबा श्रेष्ठ सोमान में नेचुरल हैं वैसे मुझे फॉलो करना है। उतारा नहीं हमारे सामने रोल मॉडल हैं। हिस्ट्री हॉल में देखो ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा शेर की तरह बाबा बैठा है, चेहरे पर नशा छाया हुआ है नारायणी नशा। बाबा को फॉलो करो, जैसा नशा चढ़ा हुआ है बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ऐसे मुझे भी चढ़ाना है कि ईश्वरीय नशा आत्मा की जान है, आत्मा की शान है। लिखो, मैं यहां बैठा हूं, मेरे में आत्मा नहीं होगी तो आप कहेंगे मुर्दा यहां बैठा है। तो ऐसी आत्मा की जान है ईश्वरीय नशा, आत्मा की शान है ईश्वरीय नशा। तो स्वमान में रहने से ऑटोमेटिक हमारा ईश्वरीय नशा धीरे 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 बढ़ता जाता है। पांचवी बात है, स्वमान में रहना अर्थात माया दुश्मन से सदा सेफ रहना। जब हम स्वमान में रहते हैं तो माया के प्रलोभन हमें रिझा नहीं सकते, दूसरे कोई भी प्रलोभन हमें आकर्षित नहीं कर सकते अपने तरफ। या होगा गॉडली नशा या होगा वर्ल्डली नशा। अब अगर गॉडली नशा है तो वर्ल्डली नशा आपको अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। कितने भी प्रलोभन माया दिखाएं हमको, अपने तरफ वो आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वरीय नशा सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ नशा है। माया के दो प्रलोभन है, कौन से प्रलोभन है आकर्षित करने वाले बोलो? हाँ, रूप और रुपया, ये दो प्रलोभन माया के हैं। रूप से या रुपया से आकर्षित करेगी, कुत्ते को रोटी दिखाते हैं ना आकर्षित करता है, पूंछ हिलाता रहता है, ऐसी माया भी हमें आकर्षित करती है रूप के द्वारा या रुपया के द्वारा। भगवान ने मुझे बहुत 21 जन्मों का प्रारब्ध का लड्डू दिया है, उसके सामने ये कुछ नहीं है, झूठा लड्डू है ये दुनिया का। सदा सेफ रहते हैं। बड़े लोग जो बाहर जाते हैं कभी तो जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, दुश्मन मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचे है। तो ऐसी जो बाबा के बच्चे रॉयल होते हैं वो ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर बाहर जाते हैं, माया के युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो माया दुश्मन उन पर वार नहीं कर सकती है, वार अगर करती है तो भी उसका असर नहीं उन पर होता है, वो सदा सेफ रहते हैं। समझा? छठवा लाभ है, सुमानधारी होकर रहना अर्थात आत्मविश्लेषण करना। जब हम एकांत में बैठते हैं, सोमान में स्थित हो जाते हैं, तो आत्मा में जो कमियां हैं, खामियां हैं, त्रुटियां हैं, वो हमें स्पष्ट नजर आती हैं। और जब तक कोई कमी हमें नजर नहीं आती है तब तक उसको निकालने का प्रयास भी हम नहीं करते हैं। डॉक्टर डायग्नोसिस करता है तुम्हें कैंसर है या ये बीमारी है, तो रोगी को वो रोग की बीमारी पता चलते ही उस रोग से जब तक वो मुक्ति नहीं पाए तब तक उसके पीछे लगा रहता है। तो ऐसे आत्मविश्लेषण करने से हमें अपनी कमी को अच्छी तरह से जानने लगते हैं और उसको जब तक मिटाते नहीं निकालते नहीं तब तक पश्चात करते रहते हैं। कोई हमें 10 बार कहेगा कि ये कमी तुम्हारे में है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वास्तव में कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। स्वयं कमी, दूसरों की कमी, किसी की भी कमी हम देखते हैं, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। कमाई जो शब्द है ना, का माई, माई शब्द उससे जुड़ा हुआ है, माई अर्थात माया, या हो गई कमाई या होगी माई, माया बुद्धि में। तो रियल आय जब हमारी खुल जाती हैं तो हमें रियलाइजेशन होने लगता है कि ये मेरी कमी है। ये रियल आय हमें खुली रखनी है तो हमें अपनी कमियों का रियलाइजेशन होता है और उसको मिटाने का प्रयास हम भरपूर करते हैं, उससे हम फ्री हो जाते हैं। मुझे बेदाग हीरा बनना है, थोड़ा सा भी दाग मुझ आत्मा पर न हो, इसलिए मुझे एकांत में बैठकर आत्मविश्लेषण करना है, सुन में स्थित होकर। मेरी वैल्यू कितनी बढ़ाना है ये मेरे हाथ में है। जो कमियों के दाग हैं उसको मिटाएंगे तो मेरी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। हीरे की चमक ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। सातवीं बात है, स्वमान में स्थित रहना अर्थात समय के खजाने को सफल करते जाना। स्वमान में रहना अर्थात समय के खजाने को सफल करना, क्योंकि स्वमान में रहने से संगम युग की स्मृति रहती है और संगम युग में श्रुति रहने से संगम युग का समय सबसे वैल्यूएबल है। ये जानने से उस खजाने को हम सफल करने में लगते हैं। समय सबसे बड़ा खजाना है। जितने भी खजाने बाबा हमें देते हैं सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? हाँ, समय का। क्यों भाई, समय कैसे खजाना सबसे बड़ा है? उसका कारण बता, समय पकड़ा नहीं जाता है। चलो और कोई बात, हाँ, समय वापस नहीं आता है, यह कमाई का समय है। अच्छे संस्कार बनते हैं, हाँ? क्या हुआ, कल हम मेरे को नामदेव भाई है ना, एक शॉपिंग सेंटर में ले गया, मॉल में ले गया। कहता है भाई जी आपको मुझे सौगात देना है, कुछ कोई सिलेक्ट करो। बोला ठीक है भाई। मैंने अच्छा एक मोबाइल सेल फोन लिया और अच्छा एक टेप रिकॉर्डर देखा। जैसे लिए वो काउंटर पर आ गए पैसा देने के लिए, नामदेव भाई पर्स ही भूल गया, क्रेडिट कार्ड भी नहीं पर्स भी नहीं, बाप रे, वापस आना पड़ा। ऐसे ही खाली हाथ वापस आए, लेने देंगे क्या वो कोई चीज बिना पैसे? तो कोई भी चीज जो है पाने के लिए आधार क्या है? पैसा है, ये आधार है। ऐसे जो बाबा खजाने देते हैं उसका आधार क्या है? समय। इसलिए कहते हैं टाइम इज मनी। Time is not only money, but time is much, much, much more valuable than money. Money to aayega jayega, lekin time jo gaya gaya, kalap kalap ke liye mere haath se gaya. टाइम की वैल्यू देना अर्थात समय स्वयं के वैल्यू को बढ़ाना. इसलिए स्वमान में रहने से ये मेरा एक एक पल जो है बहुत कीमती है. उस समय के खजाने को हम सफल करते रहते हैं और अपने स्थिति को आगे बढ़ाते रहते हैं और स्वयं को माला माल करते रहते हैं. कहते घड़ी के कांटे को किसी की ताकत नहीं रोकने की, कोई रोक नहीं सकता, कोई कांटे को पकड़ नहीं सकता. पकड़ सकता है? तो समय को पकड़ना अर्थात समय को सफल करना. जो मेरे हाथ से चला गया अर्थात उससे मुझे कोई फल मिला नहीं, सफल फल नहीं मुझे मिला, मेरे हाथ से चला गया. इसलिए समय को सफल करते रहना ये सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है. आठवीं बात है, स्वमान में रहना अर्थात रॉयल संस्कारों को जीवन में धारण करना. हमारा जो भविष्य का जन्म होता है वो हमारे संस्कारों के आधार से होता है. जितने रॉयल संस्कार हो गए उतने रॉयल परिवार में ऑटोमेटिक जन्म हमें मिलता है, और साधारण संस्कार हो गए तो साधारण परिवार में जन्म आपका होगा. तो संगम युग है संस्कारों को, रॉयल संस्कारों को धारण करने का. कैसे धारण करेंगे, उसकी विधि क्या है, उसकी तरीका क्या है? उसका तरीका है जितना स्वमान में रहते हैं उतने ऊंचा नशा रहता है, उसे संकल्प ऊंचे चलते हैं, बोल ऊंचे चलते हैं, कर्म ऊंचे चलते हैं और संस्कार ऊंचे बनते हैं, और ऑटोमेटिक हमारा भविष्य जो है उज्ज्वल होता है, अच्छे परिवार में जन्म मिलता है. जिस परिवार में वो जन्म लेता है वो गर्भ जहां होता है वो गर्भ का और उसका म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, वो आत्मा ऑटोमेटिक खिंची 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 उस घर में जन्म लेती है. इसलिए श्रेष्ठ स्वमान में रहना अर्थात श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करना. राजा और महाराजा में क्या अंतर है? राजा को नशा होता है लेकिन महाराजा को उससे जास्ती नशा रहता है, इसलिए उसके संसार उससे रॉयल हो जाते हैं, इसलिए वो महाराजा बनता है. इसलिए हमेशा ये देखना है कि मुझे हमेशा नशा चढ़ा हुआ रहे. नशा चढ़ा हुआ है, कितना चढ़ा हुआ है कैसे पता चलेगा? बोलो कैसे पता चलता है, किससे पता चलता है? चेहरे से पता चलता है. कैसे पता चलता है चेहरे में भी, किससे पता चलता है? मुझे शराब पीना अच्छा, एक बोतल के बजाय दो बोतल चढ़ा दी, आंखें लाल हो गई, बेहोश पड़ के गंदगी नाले में पड़ा हूं, कहता है स्वर्ग में हूं, मैं तो स्वर्ग में हूं, आंखें तांबे की तरह लाल हो चुकी है. तेज से पावरफुल ईश्वरीय नशे का डोज हम चढ़ाते हैं तो हमारे आंखों से पता चलता है कि इसको तो नारायणी नशा चढ़ा हुआ है, और वो यहां दुनिया में रहते हुए कहता है मैं तो स्वर्ग में हूं, मैं तो अपनी दुनिया में हूं, अलौकिक दुनिया में अलौकिक इस बाप के साथ हूं, विचरण कर रहा हूं, मस्ती में झूम रहा हूं। हाथ कार्डे दिल यार्डे कहते हैं ना, हाथ से काम कर रहे हैं, दिल यार के पास है हमारा। तो आंखों से पता चलता है आपको कितना नशा चढ़ा हुआ है, ईश्वरीय नशा, समझा। मन जितना अपना रहता है उतना चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देती है, ऑटोमेटिक दिखाई देती है। एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, कितना भी सुंदर चेहरा हो लेकिन उस पर मुस्कुराहट नहीं हो कोई देखना नहीं चाहेगा। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। बाबा ने जो हमें सत्य ज्ञान दिया, जो ज्ञान की गुत्थिया बाबा ने खोल दी, उससे हमें सुख मिल गया। ये तो पहले मुझे हुए थे भगवान के, भगवान के बिना सुख मिलता नहीं, उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, नशा छाया हुआ। मैं आबू से अहमदाबाद आ रहा था तो एक दूसरे डब्बे में कुछ अज्ञानी लोग बैठे थे, कहते ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी पहचानने की निशानी क्या है? बड़े ध्यान से कान लगा के सुन रहा था बाजू में, ये क्या कर रहे चर्चा, ब्रह्मा कुमार को कैसे पहचानेंगे भाई? तिरताने भाई, उसकी दो निशानियां हैं। पहली निशानी तो उसके चेहरे पर खुशी होगी और उसके चेहरे पर चमक होगी ब्रह्मचर्य की, समझ लो वो 100% कपड़े भले कैसे पहने हो उसने, लेकिन वो ब्रह्मा कुमार है। अब देखो अज्ञानी लोग कह रहे, अज्ञानी लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, उसके चेहरे पर खुशी होगी और चेहरे पर चमक होगी, समझ लो वो ब्रह्मा कुमार है। आज देखो लोगों के चेहरे कैसे हैं, खुशी ढूंढ के ढूंढने से भी नहीं मिलती है। तो मन की प्रसन्नता चेहरे पर झलकती है, फेस इज अ मिरर ऑफ अवर माइंड, जो मन में चलता है वो चेहरे पर दिखाई देता है। और मन को चुराने वाले, प्रसन्नता को चुराने वाले तीन चोर हमारे पास बार बार आते हैं, चिंता भय और बोझ। ये तीन चोर बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, किसी को आने नहीं देना है। चिंता भय और बोझ, किसी को पटकने नहीं देना है। चिंतामणि बाप मुझे मिल गया, चिंता किसकी? भय सर्वशक्तिमान बाप मेरा बैकबोन है, भय की चीज का? बोझ सारे संसार का बोझ वाला भगवान मेरा बाप बन चुका है, बोझ किसका है? कोई बोझ? बेपरवाह बादशाह की तरह मेरी स्थिति है। इसलिए जितनी बड़ी हती उतनी बड़ी मस्ती, जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती हमें चढ़ी रहे। दुनिया के सबसे बड़ी हस्ती में मिली है, मेरा बाप है वो, कहने मात्र नहीं प्रैक्टिकल बाप है मेरा, उसने मुझे अडॉप्ट किया है, मेरा हाथ उसके हाथ में है और मुझे वो पालना दे रहा है। तो चेहरा बोले, चलन और जिसे बहुत सेवा करनी है हमने। नवी बात है, सोमान में स्थित रहना अर्थात सबकी विशेषताएं देखते रहना। सोमान में स्थित रहते हैं तो ऊंची स्थिति रहती है, जब ऊंची स्थिति रहती है तो किसी की भी हमें कमी नजर नहीं आती है, किसी का दोष हमें नजर नहीं आता है। जैसी नजर होती है वैसे नजारे होते हैं, ऐसा हमारा नजरिया होता है। जब सोमान में रहते हैं, बहुत ऊंची शान में रहते हैं, किसी की कमी हमें नजर आती ही नहीं। द्वापर युग से क्या हुआ, अच्छाई तो हमें नजर आती ही नहीं थी, हर एक की कमी ढूंढते थे हम, इसमें क्या कमी है, इसका कमी कहें, मैं कोई डस्टबिन नहीं हूं सबके पास से जो कचरा है वही इकट्ठा करके अपनी बुद्धि में जमा करूं, कोई मैं डस्टबिन नहीं हूं। मधुमक्खी जैसे हर फूल से वो मधु लेती हैं, अच्छाई लेती हैं, ऐसे मुझे हर आत्मा से विशेषता ही सिखाना है, देखना है। तो समान में जो रहते हैं वो हमेशा सबकी विशेषताएं है देखते हैं, किसी की भी कमी उनको नजर ही नहीं आती है। समझा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बोलते हैं ना, तो दृष्टि ऊंची होती है उसकी स्थिति ऊंची होती है तो दृष्टि ऊंची होती है, इसलिए उसकी कमी किसी की नजर आती ही नहीं। बड़ा व्यक्ति कौन होता है, किसको बड़ा व्यक्ति कहते हैं, जिसका दिल बड़ा होता है। और बड़े व्यक्ति की निशानी है क्षमा भाव, रहम भाव उसके पास होता है, उदारता उसके दिल में होती है। समझा, इसलिए हमें चश्मा निगेटिविटी का जो माया ने पहना हुआ है उसको फेंक देना है, और बाबा ने जो पॉजिटिविटी का चश्मा दिया है उसको पहनकर रखना है। सबकी मुझे पॉजिटिविटी ही देखनी है, हर एक आत्मा में विशेषता है, कोई भी आत्मा नहीं है जिसमें विशेषता नहीं है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे लुंगड़ा हो चाहे कैसा भी हो। मनुष्य जन्म प्राप्त किया, उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पशुओं की ईसर की उधर की योनि में वो नहीं गया है, बहुत महान कार्य उसने किए हैं, इसलिए वो मनुष्य योनि में आया है। किसी भी प्रकार का वो व्यक्ति हो, बहुत भाग्यशाली वो आत्मा है, इसलिए हमें उसी नजर से सबको देखना है। समझा, और दसवीं बात है सोमान में अर्थात स्व पिता से कनेक्ट होकर रहना। क्यों हमारा कनेक्शन टूटता है, टूटने के बाद उसको जोड़ने का प्रयास हमें करने पड़ता है, क्यों टूटता है, हा? हमें बाबा ने पुरुषार्थ रूपी गाड़ी दी है, उसका ईंधन क्या है, पेट्रोल क्या है उसका, ईश्वरीय नशा। जो हमें पुरुषार्थ रूपी गाड़ी दी है बाबा ने, उसका ईंधन है ईश्वरीय नशा। कितनी भी महंगी गाड़ी हो, पेट्रोल नहीं हो तो कुछ काम के नहीं, वो खटारा है। एरोप्लेन जो उड़ता है उसका भी ईंधन पेट्रोल ही होता है, लेकिन एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है, बहुत रिफाइन होता है, और जितना रिफाइन पेट्रोल होता है उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो दिन प्रतिदिन मेरा ईश्वरीय जो नशा है वो बहुत रिफाइन हो, बहुत अच्छा मुझे अनुभव होता जाएगा, तो मेरी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी जो है उड़ती कला में उड़ती रहेगी, मेरा कनेक्शन बाबा के साथ में जुटा हुआ रहेगा। क्योंकि मन बुद्धि ईश्वरीय नशे में रहने से मन बुद्धि हल्की रहती है, और हल्की चीज ऑटोमेटिक ऊपर जाती है और बाबा से कनेक्शन जोड़ने में सक्षम रहती है, और दूसरा फायदा है ईश्वरीय नशे से हमारी चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए बहुत हमें मदद मिलती है। कोई कहता है मैं बहुत झूम रहा हूं, कोई मेरी ग्लानी कर रहा है, मेरी खुशी गायब हो गई है। मैं कोई कठपुतली नहीं हूं जो कोई मुझे जैसा नचाए वैसे नाचूं, किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूं मैं। मेरी स्थिति को हर परिस्थिति में मुझे संभालना है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुझे ईश्वरीय नशे में स्वमान में स्थित रहना है और बहुत मस्ती में रहना है और बाबा से कनेक्शन जोड़ लेकर रखना है। समझा? इसलिए स्वमान को साधारण रीति से नहीं लेना है, उसमें श्रेष्ठ स्थिति का बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। कोई भी टाइटल आप देखो, बड़े जो लोग होते हैं ना विदेशों में, टाई पहने और कोट पहन पैंट पहने बिना बाहर नहीं जाते, भले वो स्वीपर भी होगा ना तो भी कोट टाई टाइटल टाइट होके जाता है, स्वयं को बड़ा समझता है, टाई पहने बिना नहीं जाएगा। तो इसे ही हमारा टाई कौन सा है, आत्मा का टाइटल। स्वमान का जो टाइटल है वो टॉय हमें पहनकर ही अपने कार्यक्षेत्र में जाना है, तो सारे दिन भर में वो आपको नशा चढ़ा रहेगा, मस्ती चढ़ी रहेगी। ईश्वरीय खुमारी अगर है तो माया की बीमारी आपको नहीं लग सकती। ईश्वरीय खुमारी में रहो, मस्ती में रहो, झूमते रहो। कैसे हमें पता चलता है मेरी उन्नति हो रही है या नहीं? एक साल पहले जो मेरी स्थिति थी उसमें उन्नति हो रही है, वो कैसे पता चलता है? स्थिति का थर्मामीटर कौन सा है? थर्मामीटर तो पता था भाई, कल से जास्ती आ रहा है आपको। तो जो एक साल पहले ईश्वरीय नशा था मुझे, वो बढ़ चुका है, इसका मतलब मेरी उन्नति हो गई है। और बढ़ाना है तो उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। ईश्वरीय नशा हमें बताता है हमारी उन्नति किस प्रकार से चल रही है। समझा? इसलिए विष्णु को कहते हैं ना, चतुर्भुज विष्णु है जो चक्र स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्र धारी अर्थात धारण करना, ऐसे स्वमान धारी अर्थात स्वमान को धारण करना, अपने जीवन का अंग बनाना, तो ऑटोमेटिक हमारी ऊंची होती है। समझा? अभी हम बहुत सुंदर प्रयोग करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष बाबा ने कहा मैंने आपको तीन ड्रेसेस दिए हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपना बड़प्पन कैसा दिखाते हैं, अलग अलग ड्रेस पहनेंगे, अपना नहाने का ड्रेस अलग, अपना घूमने का ड्रेस अलग, सोने का ड्रेस अलग, ऑफिस का ड्रेस अलग। बताते मैं कितना बड़ा हूं भाई, हम कोई छोटे छोटे हैं क्या? हमको भी बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिए हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण स्वरूप की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस और तीसरी देवता स्वरूप की ड्रेस, ये तीन प्रकार की ड्रेसेस हमें दी है। केवल बुद्धि रूपी तिजोरी में नहीं रखना है, अलमारी में नहीं रखना है, लेकिन उनको पहनना है। जितना पहनेंगे उतना वो संस्कार, वो रॉयल संस्कार हमारे जीवन में ऑटोमेटिक धारण होंगे। तो पहनना चाहेंगे वो ड्रेस? बोलो हाँ या ना। अनुभव करना चाहेंगे? हाँ भाई, करना है। बहुत सुंदर आपको अनुभव होगा, ठीक है? अच्छा, सभी खड़े हो जाएंगे। कॉपी डायरी पेन जो है थोड़ा सा एक तरफ रखेंगे। आप कैसा पसंद करेंगे, मेरे को आपको थोड़ा सा घुमाना है, एक कदम आगे लेके एक कदम पीछे लेवे, ऐसा ठीक है कि केवल ऐसे ही घूम ऐसे ही अपने को करना चाहेंगे आप? एक कदम सिर्फ, एक ऐसी ही इस जगह में आपको घूमना है, घूम सकते हैं? एक ही कदम, एक या दो, और आपस में टच नहीं होना है, थोड़ा आगे आ जाओ सब माता है। सामान देखना, किसी का पेन डायरी किसी को, बहने थोड़ी इधर आ जाओ, थोड़ा खुली में खड़ी हो जाओ बहने, आ जाओ माता जी सामने आ जाओ, थोड़ा आ जाओ अच्छी तरह से। आपको सिर्फ एक कदम दो कदम आगे लेना है पीछे लेना है, फिर मैं कॉमेंट्री देता रहूंगा, आपको वो अनुभव करना, ठीक है? चलते रहो, अभी एक कदम थोड़ा आगे लो, फिर धीरे धीरे बहुत मस्ती से फिर पीछे ले लो, एक ही साथ देखो बहने और भाई जैसे कि आगे लो, एक कदम आगे फिर रुक जाओ, फिर दूसरा कदम पीछे फिर रुक जाओ, चलते रहो, टच नहीं करना है एक दो को किसी को भी, बहुत मस्ती से घूमते रहो चलते रहो। सब भाई इधर आओ, आगे ऊपर आओ, बस ठीक, आप भी दोनों आप इधर आ जाओ, बस ऐसे करते रहो बहुत अच्छी तरह से। हाँ, ऐसे फील भी नहीं होना चाहिए कि मैं चल रहा हूं या चल रही हूं, ऐसे बहुत मस्ती से आप एक कदम पीछे फिर एक कदम, बस चलते रहो। अभी छोड़ो ना ट्रैफिक को, नहीं नहीं ट्रैफिक नहीं, अभी वो म्यूजिक चला, चलते रहो। टच नहीं करना, आराम से चलो, धीरे धीरे चलो, हाँ बस ऐसे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ड्रिल कर रहे हैं सभी। ओम शांति। आपको अभी बोलना नहीं, जो मैं बोलता रहूंगा उसको अनुभव करना है, उसको फील करना है। ओम शांति। मैं आत्मा अभी ब्राह्मण स्वरूप की ड्रेस पहन रही हूं, मुझ आत्मा को महामुख से ब्राह्मण के रूप में जन्म मिला हुआ है। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा हूँ। वारे मैं हर रोज स्वयं भगवान मुझे अमृत वेले जगाने आते हैं। इस सबको कंफर्टेबल है चलना? हाथ खड़े करो जो कंफर्टेबल है सभी। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। वेले मुझे हर रोज जगाने आते हैं पिता बनकर, मुझे परमात्मा पालना पिता की देते हैं। मैं उनका आज्ञाकारी बच्चा या बच्ची हूँ। बाद में स्वयं परमात्मा परम शिक्षक बनकर मुझे पढ़ाने आते हैं। सुमान के सिंहासन पर बिठाकर मुझे मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आएंगे।